ये मुझे बताइएगा कि जदीद दौर के अंदर, माजी के अंदर तो एक काम हुआ और माजी के अंदर उलमा ने बड़ी खिदमत की, हदीस पर तहकीक की, आज के इस दौर में क्या आप महसूस करते हैं कि ज़्यादा ज़रूरत है कि हम हदीस के मामले में ज़्यादा हसास हों, ज़्यादा तहकीक करें, ज़्यादा गौर व फिक्र करें? क्योंकि हम ये देखते हैं कि आज के ज़माने में ऐसा तो है नहीं कि लाइब्रेरियों में लोग जाते हैं, रोज़ाना बीसियों की तादाद में लोगों को रिवायतें मौसूल हो रही होती हैं और रसूलुल्लाह की निस्बत से होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज का अहद ये तकाजा करता है कि ज़रा ज़्यादा वक्त देकर उलमा तफाहुस के साथ इस मसले पर संजीदगी से गौर करें?
ये ज़रूरत अपने अपने दौर के लिहाज से हमेशा रही है।
ठीक,
इस ज़माने में आप कह सकते हैं कि लोग ज़्यादा सवालात करते हैं, उन तक चीज़ों के पहुंचने के ज़राए बहुत गैर मामूली हो गए हैं, जो कुछ भी उन तक पहुंचता है वो उस तरीके से नहीं पहुंचता जैसे पहले पहुंचा करता था कि कोई जलीलुल कदर आलिम है, कोई मुहक्किक है, वो उसकी बात सुन रहे हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं कि जो इंटरनेट से कोई चीज़ देखी, कहीं उन्होंने किसी दूसरे ज़रिए से किसी चीज़ को मौसूल कर लिया, वो उसको आगे मुंतकिल करना शुरू कर देते हैं। तो इस पहलू से अगर आपकी बात को काबिल तवज्जो समझा जाए तो इसमें शुबा नहीं कि हमारे उलमा को ज़्यादा तफाहुस के साथ, ज़्यादा तदब्बुर के साथ हदीस को मौजू बनाना चाहिए। मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि सबसे ज़्यादा बड़ी, सबसे ज़्यादा बुनियादी, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो इस मामले में है वो ये है कि लोगों को ये बता दिया जाए कि इस सारे ज़खीरे की कोई ज़िम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयद नहीं होती। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को पहुंचाने के लिए ये तरीका इख्तियार ही नहीं किया।
ठीक,
दीन को पहुंचाने के लिए जो तरीका आपने इख्तियार किया वो हम इससे पहले बड़ी तफसील के साथ जान चुके हैं, यानी अल्लाह की किताब के ज़रिए से दीन पहुंचाया गया और सुन्नत के ज़रिए से, और सुन्नत के बारे में हम ये बात बड़ी तफसील के साथ वाज़े कर चुके कि उसका कोई ताल्लुक़ इन अखबार से नहीं है, उसका कोई ताल्लुक इन रवायात से नहीं है, वो असल में मुसलमानों के इजमा और तवातुर से मुंतकिल हुई है, उसमें किसी बहस व नज़ा की कोई गुंजाइश नहीं।
ठीक,
ये जो कुछ है इसके पीछे रावी हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। यानी रसालत माँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कोई शख्स गया है, किसी ने आपकी बात सुनी है, किसने कोई सवाल किया है, आपने उसका जवाब दे दिया है, ये दर हकीकत आपकी सीरत है, आपके सवाने हैं, आपकी ज़िंदगी के वाकयात हैं। इस लिहाज से मैं इसको ये ताबीर देता हूँ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपके इल्म, आपके अमल का तारीफ़ी रिकॉर्ड।
ठीक,
इससे ना दीन में किसी अकीदे का इजाफा होता है ना कमी होती है, ना किसी अमल का इजाफा होता है ना कमी होती है। ये जो कुछ करती है वो क्या करती है, यानी कुरान से मुतल्लक कोई बात पूछी गई आपने उसकी वजाहत कर दी या अपने तौर पर कोई बात समझा दी, इसी तरह सुन्नत के बारे में कोई चीज़ देखी गई, सुनी गई, रावियों ने उसको बयान कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ जो लोगों पर वाज़े होनी चाहिए और जिसको वाज़े करने के लिए बार बार अदा करना चाहिए वो ये है कि ये जो कुछ आपके सामने आता है इसमें रिसालत माँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती। रावियों की तहकीक करनी चाहिए और जब तहकीक करने के बाद आखिरी दर्जे में आप मुतमिन हो जाएं तो उसके बाद ऐसी चीज़ें आगे फैलानी चाहिए, और उसमें भी ये बात वाज़े कर देनी चाहिए कि ये गुमाने गालिब है। यानी हमारा जो इल्म है वो इसको एक जन्नी इल्म कहता है, इस पर मुसलमानों के पूरे इल्म की रवायत का इत्तेफाक है, एक आध मकतबे फिक्र को छोड़कर, कि ये सब जन्नी इल्म है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गालिब गुमान है कि ये बात हुजूर ने फरमाई होगी या हुजूर के अमल में देखी गई होगी। मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये जो कुछ हुआ बिल्कुल फितरी तरीके से हुआ, यानी इसको रोकना मुमकिन ही नहीं था और रोकने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। हुजूर को जो लोग देखेंगे, जो आपकी बातें सुनेंगे, वो जाकर शौक से आगे बयान करेंगे, और जब वो बयान करेंगे तो सुनने वाले भी अपने बच्चों को बताएंगे, अपने दूसरे लोगों को उसे मुंतकिल करेंगे। इस ज़खीरे को हर हाल में तरतीब पाना था। जब एक शख्सियत तारीख की रोशनी में आएगी तो उसको देखने वाले, उसकी बातें सुनने वाले ये सारा रिकॉर्ड तरतीब देना शुरू कर देंगे। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं था कि फौरन एक किताब मुरतब की जाती, लोगों को वो किताब फराहम की जाती, इसने ऐसे ही मुंतकिल होना था। ये आज भी ऐसे ही मुंतकिल होती है। रिसालत माँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तो खैर गैर मामूली शख्सियत है। ये कायद आज़म के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में, आइंस्टाइन के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में, फिरदौसी के मामले में, हाफिज़ के मामले में ऐसे ही मुरतब हो, यानी वो बातें करेंगे, लोग उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे, उसके बाद अपनी सवाबदीद पर उसको बयान करेंगे। कोई नहीं बयान करेगा, کوئی بہت زیادہ بیان کر دے گا، کوئی بہت کم بیان کرے گا، کوئی احتیاط کے ساتھ بیان کر دے گا، کوئی اپنی طرف سے اس کو روایت بالمانا کے طریقے پر بیان کرے گا، اور اس میں بات میں بھی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں یا آفات اس صورت حال کے ساتھ لاحق ہیں، ان کو قبول کر کے اس کو دیکھنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے یہ ضرورت پیدا کی کہ جلیل القدر محدثین پیدا ہوئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری تاریخ میں یہ بڑا قابل فخر کام ہوا ہے، یعنی اس میں آپ عیب نکالنے کی بجائے آپ دیکھیے یہ کام کتنا بڑا کام تھا۔ یعنی لوگ ایک بات بیان کر رہے ہیں، کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی کوفہ میں، کوئی مکہ میں، کوئی مدینہ میں، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، ان کے پاس جانا، ان سے ان چیزوں کو سننا، اگر کوئی بات آپ تک پہنچی ہے تو اس کی تحقیق کرنا، افراد کی شخصیت کو جاننا، ان کے احوال کو جاننا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں یہ کام کیا ہم سب کے سر ان کی عظمت کے سامنے جھکنے چاہیے۔ تاریخی ریکارڈ کی تحقیق اور تنقید کا اتنا بڑا کام یہ ہوا ہے کہ اس کام پر مسلمان، میں نے پھر عرض کروں گا، کہ فخر کر سکتے ہیں۔ اس کو اس مثبت زاویے سے بھی دیکھیے، اور دوسری جانب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے راوی حضرات ہیں۔ جب تنقید کی جا رہی ہوتی ہے یا تحقیق کی جا رہی ہوتی ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تنقید نہیں کی جا رہی ہوتی۔ اگر کوئی آدمی آپ کی بات پر تنقید کرے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو پیغمبر ہی نہیں مانتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں کہ جو وہ بات کہیں دین کی حیثیت سے اس کے سامنے سر تسلیم خم۔ یہ جو تحقیق، جو تنقید، جو تنقید ہو رہی ہوتی ہے وہ راویوں پر ہو رہی ہوتی ہے، یعنی دیکھنے والوں پر جو آگے بیان کرے، سننے والوں پر جو آگے بیان کرے۔ ہمارے محدثین نے بھی یہی کام کیا ہے، یعنی ان کا سارا کام اصل میں اسی اصول پر مبنی ہے۔ تو اس بنیادی حقیقت کو ہمیں بار بار لوگوں کو بتانا چاہیے، اس کے بعد کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ جو اصول بنائے گئے ہیں، جو تحقیق کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں، ہم جب انہیں بیان کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ کتنے غیر معمولی طریقے ہیں، اس میں کتنی دقت نظر سے کام لیا گیا ہے۔ اس میں اگر آج آپ کسی چیز کا اضافہ کریں گے یا کسی چیز کی مزید تنقید کریں گے تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہوگا جس کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔